हाउ आर यू गाइस, दिस इज शेयर जोशी फ्रॉम द गवर्नमेंट टॉक्स। एंड आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एक्चुअली स्पेशल एपिसोड नहीं है, स्पेशल है वो सर, जिसकी वजह से आज का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, नॉलेजेबल होने वाला है और इफेक्टफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच नटराजन पल्लाई सर फॉर बीइंग हियर फॉर दिस पॉडकास्ट।
थैंक यू फॉर कॉलिंग मी बेटा।
सर मैं आज बहुत हॉनर फील कर रहा हूँ क्योंकि आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट लिमिटेड, जो कि आई गेस एशिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट फाइनेंस का इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पे आप एक लीडिंग प्रोफेसर हो, तो मुझे बहुत पसंद है यूजुअली प्रोफेसर से बात करना। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा सुपर होती है और उनसे बात ज़्यादा ही कुछ कन्वर्सेशन बहुत अच्छा होता है उनसे। और अगर आपकी बात की जाए, मुझे आपके साथ एक आपका एक जो बात वे है बात करने का, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप कोई भी बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स भी आता है, उसमें मॉरल वैल्यूज भी आता है, उसमें लाइफ कोचिंग्स भी आती है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच सर आप यहाँ पे।
इट्स रियली प्राउड कि मैं अपने स्टूडेंट्स के मुँह से अपनी तारीफ सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है कि इसका कुछ तो अर्न किया है भाई, बैंक बैलेंस नहीं तो कम से कम लोगों के दिल में बैलेंस पहुँच जाता है।
यस सर, यस सर। सर ये मेरा आई गेस गोल्डन रूल है जो मैंने बहुत सीखा है, कि पॉडकास्ट का स्टार्टिंग है ना वो लाइफ स्टोरी से ही होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जो सब्जेक्ट है या हर एक इंसान जो भी जहाँ पे भी सक्सेसफुल होता है, उसकी जो पीछे की जो लाइफ स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एक इंसान को आगे बढ़ाने में। और मुझे बहुत लोग जिसको जो जो लोग आपको जानते हैं वो तो पता है कि आप इकोनॉमिक के गुरु हो, मुझे ऐसा लगता है, बट इकोनॉमिक्स के पहले आपका लाइफ क्या था मुझे वो जानना है सर।
तो यू वॉन्ट टू नो माई स्टूडेंट लाइफ और कॉलेज लाइफ?
स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ।
ओके, स्टूडेंट लाइफ अगर बोला जाए तो एक्चुअली आई वॉज अ लास्ट बेंचर। लास्ट बेंचर बिकॉज वो बहुत इनोवेटिव होते हैं। फर्स्ट बेंचर लोग फिक्स रहता है कि पढ़ना है, टीचर के सामने इंप्रेशन क्रिएट करना, और लास्ट बेंचर कहते हैं कि अब मैं ऐसा क्या करूँ कि लोग मुझे देखें। और डेली आप सेम नहीं कर सकते, तो आपको हर दिन नया सोचना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि लास्ट बेंचर ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, तो बचपन से ही बहुत इनोवेटिव था। तो कभी अपने फ्रेंड्स लोगों को सताना या टीचरों को कुछ मीम्स बनाना, और हमारे टाइम पे मीम्स बहुत अच्छे बनते थे क्योंकि वो फैलते नहीं थे।
हाँ।
तो कोई कॉपी नहीं कर सकता, हमारे मीम्स हमारे मीम्स होते थे, कोई टीचर का नाम रख गया कुछ ऐसा, तो ऐसा बहुत सारे थे। तो आज भी वो टीचर्स मिलते हैं तो वो नाम से याद रखते हैं।
सर मुझे एक याद है, आप BSc का एक समथिंग कोई पेज बना था, मुझे याद नहीं है, अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ। और आपका मीम बना था कि नटराजन पिल्लई जो भी लेक्चर आता है स्टॉक सब ऊपर चढ़ रहा है।
तो आई थिंक वहाँ पर स्टॉक यानी कि मेरे बच्चों का दिल और दिमाग है, और मुझे पता है कि मेरे लेक्चर में जब भी आता हूँ मेरे बच्चों का दिमाग और दिल दोनों हाई पिच में होना चाहिए। अगर मैं अपनी एनर्जी आप लोगों के अंदर नहीं डाल पाऊँ तो आई एम नॉट अ गुड टीचर। तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ सोच के पढ़ाता हूँ कि मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ। और ये चीज़ मेरे बचपन में ऐसा नहीं था, मेरे बचपन ऐसा था कि ठीक है मेरे को एवरी ईयर पास होना, मुझे कैसे भी करके फेल नहीं होना, क्योंकि मेरे घर पर एक रूल था कि जो फेल होगा वो गैरेज जाएगा।
अच्छा ऐसा?
हाँ, क्योंकि हम लोग कोलियावाड़ा के, तो हम लोग खुद के गैरेज जाऊँगा। तो वहाँ पर ऐसा था कि घर पे रूल था कि जो फेल होगा वो गैरेज संभाले।
तो फादर आपके?
हमारे फादर वाज अ टैक्सी ड्राइवर, उसके पहले वो गैरेज का काम करते थे, बट ही वाज अ टैक्सी ड्राइवर। तो उन्होंने क्या सोच के रखा था कि ये लड़का बहुत हार्ड वर्किंग है और इनोवेटिव थिंकिंग है, तो अगर ये गैरेज लाइन में आएगा तो बहुत सक्सेस करेगा।
अच्छा,
क्यों पैसे कमाएगा? क्योंकि कैसा है कि उस जमाने में कैसे, जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा पैसे, जितना जल्दी बच्चा काम पे लगे घर में इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उनको फिफ्थ स्टैंडर्ड से वो सोच रहे थे कि ठीक है अगर ये जल्दी काम पे लग जाएगा तो ये ब्रेड अर्निंग हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली उनके तरफ से और मेरे तरफ से फॉर्चुनेटली कि मैं हर साल पास होते गए, पास ही पास ही चला। यू नो मेरे को आज भी याद है, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, मेरी मुँह बोली बहन भी है, निशा सिंह करके है या भारती करके मेरी मुँह बोली बहन है, वो मुझे जब भी मिलते थे पूछते थे एग्जाम्स के बाद पास हो जाएगा ना रे, सात मार्क तो आ जाएगा ना तुझे। ओके, तो ऐसे चीज़ें होती थी। फिर मेरा पास होने का अगर पूरा श्रेय बोलूँ तो सुरेश सर करके हैं जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो जब से मेरे लाइफ में आए मैंने फेलियर देखा नहीं।
अच्छा,
तो वो ऐसे करते थे कि लास्ट दिन सर्जन बैठ के पढ़ने का।
ऐसा ऐसा क्यों? मतलब
हम लोग एक्चुअली कैसा है, वी हैव बीन यूजिंग स्टेइंग इन स्लम एरिया, तो हम लोग जोड़पट्टी में रहते थे और हमारे पास पढ़ने का जगह नहीं होता था, क्योंकि वन रूम था, किचन विचन कुछ नहीं होता, तो हम लोग जब पढ़ने बैठते थे माँ बाप का सोने का टाइम हो जाता था, लाइट चालू नहीं रख सकते थे। तो एग्जाम के टाइम पे सुरेश सर के पापा जो थे ये थे गवर्नमेंट सर, वो साइन हॉस्पिटल में काम करते थे, तो हम लोग उनके टेरेस में जाए क्योंकि उनको गवर्नमेंट क्वार्टर्स था, तो उनके टेरेस में लाइट लगा के हम लोग पढ़ते थे, और ऐसे पढ़ते थे कि हर एग्जाम में पास हो जाए।
अच्छा,
तो वो इनोवेटिव था उन के लिए कि कुछ नया करें। तो उसमें 2 घंटे की पढ़ाई होती थी बट पूरी नाइट स्टे होता था।
अच्छा,
बट उस नाइट स्टे में हम लोग बहुत कुछ करते थे पढ़ाई छोड़ के, बट जब एग्जाम लिख के आते थे तो 20 में से 7, 100 में से 35 आ जाता।
अच्छा, वैसे
या
मतलब पास तो होना ही है,
पास तो होना ही।
हाँ,
तो बिकॉज ऑफ सुरेश सर मेरे पापा की इच्छा पूरी हुई कि मैं फेल नहीं हुआ। वैसे हम लोग गए, फिर एंड ऑफ दैट 10th स्टैंडर्ड खत्म हुआ तो मुझे लगा कि लाइफ में भी चेंजेस होने चाहिए, तो और ज़्यादा मस्ती करने लगा। कुलजोड़ा में थे तो फ्रेंड्स लोग अलग तरीके के लोग थे, तो यहाँ वहाँ घूमना फिरना चालू किया और लाइफ में एक टर्न आया। माय फादर वाज टेस्टेड कैंसर पॉजिटिव, कैंसर उनको हो गया था। उनका कैंसर हुआ और इट वॉज द प्राइम स्टेज था, बट जब तक हमको पता चला तब तक वो एडवांस स्टेज में पहुँचे।
अच्छा,
फिर उनको वोकल कॉर्ड निकालना पड़ा, यहाँ पे होल्ड करना पड़ा उनको। इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग प्रोसेस। अभी ऐसा लगा कि अब मेरे पास है क्या करने के लिए,
अब मैं बाहर नहीं घूम सकता,
क्योंकि गैरेज लाइन में सीखने का उम्र निकल चुका था।
हाँ,
कि गैरेज लाइन में सीखने का उम्र होता था 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड, वो एक एज होता था जब 12 साल 13 साल 14 साल में इंसान सीख लेता था, और 15-16 साल तक वो करियर अपना बना लेता था गैरेज। तो मेरा वो पीरियड निकल चुका था। फिर मैंने ट्यूशन्स लेना स्टार्ट किया, तो फिर वो मेरा एक लाइफ चेंजेस आया कि पैसे की इंपॉर्टेंस मालूम पड़ी। फिर मेरे को वो कॉलेज के लिए फीस भरना है, पापा से मांग नहीं सकता हूँ। फिर मैं सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के न्यूज़पेपर डालना स्टार्ट किया। हर वेकेशंस में कहीं ना कहीं जॉब करते थे हम लोग, जाके फैक्ट्रीज वगैरह में लेबर जॉब करते थे। फिर सन ब्रांड अम्ब्रेला जो है तो बहुत फेमस ब्रांड है, तो वहाँ पर एज अ सेल्समैन काम किया।
अच्छा,
फिर बहुत सारा लाइफ में मेरा ऐसा चेंजेस आया कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा बिकॉज ऑफ दैट सेल्समैन।
हाँ, सेल्स में मोस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है,
बढ़ जाता है, तो लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना, वो सब चीज़ आने लग गया। इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आने लग गया कि तभी हम लोग का इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था। इंग्लिश में पढ़ते थे बट इंग्लिश नहीं आता क्योंकि हमारे टीचर हिंदी में बात करते, आंसर पेपर इंग्लिश में होता था, बाकी रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज इन हिंदी, इंक्लूडिंग टीचर्स आर ऑलवेज टॉकिंग इन। फिर वो चेंजेस आना स्टार्ट हुआ, तो फिर आस्ते आस्ते ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ने लगा। 12th स्टैंडर्ड कैसे कैसे पास हो गए, 12th स्टैंडर्ड पास होने का ऐसा हो गया कि मेरे सारे फ्रेंड्स लोग अलग अलग कॉलेज में चले गए।
हाँ, आप अकेले रह गए।
मैं अकेला गुरु नानक कॉलेज में रह गया।
अच्छा,
और मेरे उसके पीछे ऐसा हो गया था कि यार मैं अभी क्या करूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है।
हाँ,
तो हम लोग ऐसा था कि हमारे ग्रुप में कोई भी अच्छा परफॉर्म करेगा, एक तू जा तू मॉनिटर बन जा, तू जा तू ये बन जा, तो हम लोग दूसरे को हेल्प करते थे। तो अब मैंने देखा कि वाई शुड आई हेल्प अदर्स, वाई नॉट माई सेल्फ।
बराबर,
तो वहाँ पर एक NSS का मीटिंग हुआ कि पूरे कॉलेज में झाड़ू मारना है, ये यार पूरे कॉलेज में झाड़ू मारना है। बट एक हम लोग को लालच दिया था कि जो NSS में सेलेक्ट होगा उसको लास्ट में 10 मार्क मिले।
अच्छा,
अरे यार पासिंग होने के लिए तो बहुत काम आएगा। तो पासिंग मार्क लेने के लिए मैंने NSS ज्वाइन किया। बट वो मेरे लाइफ का सेकेंड टर्निंग पॉइंट आफ्टर माई फादर्स कैंसर, वो मेरा सेकेंड टर्निंग पॉइंट। तो जब वहाँ पर ज्वाइन किया, जब झाड़ू मार रहे थे,
साफ सफाई क्या होता है मुझे एक बार अपने व्यूअर्स को बता सकते
हैं। NSS एक ऐसा स्कीम है बेटा जो गवर्नमेंट चलाती है कॉलेजेस में, इट इज़ नेशनल सर्विस स्कीम, जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि नॉट मी बट यू। उनका लोगो ऐसा है, नॉट मी बट यू, ब्लू कलर का उनका लोगो है, उसमें रेड कलर के कुछ निशान, वो उसके पीछे रीजन है कि आसमान जैसा ब्लू है और तुम यंग ब्लड, पूरे आसमान में तुम्हें छाना, दैट वॉज अ लोगो। एंड नॉट मी बट यू, यानी कि पहले तुम अपने आप को नहीं देखो, पहले तो सोसाइटी की सेवा करो। तो NCC इज फॉर डिसिप्लिन, तो NSS इज फॉर सेवा। तो उसमें जब ज्वाइन हुआ, तो जब झाड़ू वाड़ू चल रहा था तो मैंने बोला यार ये तो उधर बराबर नहीं हो रहा, इधर बराबर नहीं हो रहा, तो मैं 2-3 दिन को डांट रहा था। तो वो डांट रहा था तो किसी ने देखा मुझे कि तो डांट के काम करा रहा है। सेकेंड डे कॉलेज में आके देखा तो बोर्ड के ऊपर नाम लिखा, पहली बार जिंदगी में अपना नाम बोर्ड लिखा विदाउट कंप्लेंट। ना कंप्लेंट भी ऐसे तो बहुत सारे नंबर आ चुके थे, लास्ट बेंच होता था कंप्लेंट आते ही रहते थे। तो विदाउट कंप्लेंट मेरा नाम कुछ पॉजिटिव चीज के लिए कि ही इज बीन सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट लीडर। ओह, ये कैसे हो गया? फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई केम टू नो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है सर के ऊपर, तो केपेबल इंसान उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़ता है, और जो केपेबल नहीं है उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से वो टूट जाता है।
सर, ये तो आपका इकोनॉमिक्स के पहले वाला लाइफ था। मुझे जानना है इकोनॉमिक्स कहाँ से है? मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले एक बुक पढ़ा था, स्टार्ट विथ वाई, और बहुत अच्छी बुक है। और उसमें एक्चुअली मेन उसका कहना ये है कि कोई भी काम शुरू कर रहे हो तो उससे पहले वाई पूछो कि वो काम करने का रीज़न क्या है, और वो वाई जितना स्ट्रांग रहेगा आपका काम करने का जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, और जो मोटिवेशन है वो ज़्यादा रहेगा। सर इकोनॉमिक्स क्यों, वाई इकोनॉमिक्स? क्योंकि आप ऐसे इकोनॉमिक्स में अभी फिलहाल बहुत मेरे हिसाब से द बेस्ट प्रोफेसर इन इंडिया फॉर इकोनॉमिक्स।
तो आप लोग का रेस्पेक्ट और प्यार है बेटा, बेस्ट तो मैं कभी नहीं मानता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज चूज टू बी बेटर देन द बेस्ट।
सर हमारी लाइफ में तो आप ही फिलहाल
नहीं, मैं बोलूँ तो तुमने मुझे रोक दिया है, तुमने मुझे सीमांकित कर दिया, तुमने मुझे बांध दिया है कि सर आप बेस्ट हो, इसके आगे आप नहीं जाओगे।
हाँ
तो आई ऑलवेज प्रीफर टू बी बेटर।
तो ये बेस्ट वाली थिंकिंग नहीं होनी चाहिए।
यस, बिकॉज तुम रुक गए एक जगह में आके, अब कम्फर्ट जोन में आ गए कि बेस्ट हो के आगे कुछ नहीं करना। आई बिलीव इन बेटर, तो हाउ मच मोर आई कैन बी बेटर, बिकॉज सुपरलेटिव में जाना ही नहीं मुझे, मुझे कंपैरेटिव में ही रहना कि मैं बेटर हूँ, इससे और बेटर कैसे हो सकता।
और वो
तो अगर मैं बेस्ट हो जाएगा तो मेरा ग्रोथ रुक जाएगा, तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन जाना ही नहीं। और इकोनॉमिक्स यही सिखा था कि सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो अनलिमिटेड वांट्स,
डिमिनिशिंग मार्जिन,
लिमिटेड मींस है हमारे पास। और मेरा कोई भी, अगर आज मैं बोलूंगा कि अंबानी से अमीर कोई नहीं है, तो बोलूंगा फिर वो काम करना क्यों नहीं बंद कर दो, वो और बेटर करना चाहता है। वो तो इंडिया में अमीर हूँ, मैं एशिया में अमीर बनना चाहता हूँ, वर्ल्ड में अमीर बनना चाहता हूँ, और बनने का उसे मेंटेन करना चाहता हूँ। एक बार बनने का रुकूंगा नहीं, तो उसे मेंटेन रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे से भी पहला कोई नंबर वन है। आज मैं नंबर वन हूँ, और मेरे बाद कोई नंबर वन ना हो जाए, तो मुझे मेंटेन करना है। तो इट्स ऑलवेज प्रिफरेबल टू बी बेटर देन द बेस्ट।
सर मैंने जितने भी इकोनॉमिस्ट सुने हैं, देखे हैं, और जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े, कभी बहुत सारे थीसिस भी पढ़े इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो मैंने ये देखा है कि इकोनॉमिक्स के जो डेफिनेशन होते हैं वो बहुत, हर एक इंसान अलग अपने अपने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को बहुत अलग अलग डिफाइन करते हैं, और बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं। एक बोलता है डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स है, एक बोलता है कि मनी इकोनॉमिक्स है। सर आपका क्या व्यू है, वॉट इज इकोनॉमिक्स एज पर यू?
ओके, अभी कोरोना चालू,
हाँ,
एक मशीन बहुत बिक रही है, आपके फिंगर्स में लगाना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसे,
ऑक्सीमीटर।
वेरी गुड, ऑक्सीमीटर।
हाँ,
अगर मैं अभी आपको एक ऑक्सीमीटर लगाऊँ, मेरे को एक ऑक्सीमीटर लगाऊँ, क्या हम दोनों का सेम आएगा ऑक्सी लेवल?
नहीं, नहीं आएगा।
मैं, हम लोग सेम रूम में बैठे हैं,
हाँ,
सेम हवा है, तो क्यों सेम नहीं आ रहा
है? बॉडी अलग है,
तो बॉडी है। तो हर इकोनॉमी के लिए हर इंसान अपने तरीके से सोचता
है,
अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना व्यू रहता है, और उस व्यू के अंदर ना समझने एक चीज़ लेके चलते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कि ये रहेगा तो ही होगा, क्या बोलते हैं उसे, assumption।
Assumption,
राइट, वो assumption बोलना बहुत जरूरी है, वरना पंपिंग तो मशीन भी होता है बट उसमें जान नहीं होती।
बट क्या इकोनॉमी assumption सिर्फ है?
इकोनॉमी में अगर assumption नहीं है तो फिर आपका व्यू उसके साथ जस्टिफाई नहीं करेगा। आपका व्यू जस्टिफाई तभी करेगा जब आप अपना assumption के बारे बात करो। मैं कुछ और assume कर रहा हूँ और आप कुछ और। मेरे अगर मैं बोलता हूँ कि अर्निंग मनी इज इकोनॉमिक्स, तो इट इज इनकम्प्लीट, बिकॉज एथिकल नॉन एथिकल आ जाता है। नाउ अगेन, व्हाट इज एथिकल एंड व्हाट इज नॉन एथिकल? एक आदमी चाकू लेके पेट फाड़ता है, इट इज एथिकल और नॉन एथिकल?
सर वो डॉक्टर होता अलग बात।
हाँ, तो अगेन तेरा चेंज हुआ,
हाँ,
इफ बोला तुमने, बट जिसको मालूम है कि इसका पेट फाड़ने से मेरा देश बचेगा, तो वो भी आर्मी मैन है ना, वो भी तो एथिकल हो गया।
हाँ,
बट तुमने किसी और के हीरो को मार दिया ना, क्योंकि पाकिस्तान का है या चाइना का है, जो भी है वो उनका
ही कॉन्ट्रोवर्सी। वैसे
कॉन्ट्रोवर्सी है तो इकोनॉमी भी ऐसी है कि एक इंसान अपना पर्सपेक्टिव बनाता है, उस पर्सपेक्टिव के ऊपर वो बात करता है। तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि टेक्स्ट बुक जो फॉलो करते हैं वो सिर्फ ऐसा गाइड होना चाहिए, और गाइड कभी लाइफ को सक्सेस नहीं करेगी, वो आपको हेल्प करेगी। सक्सेस तो आपके ऊपर है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, टॉक आउट ऑफ द बॉक्स, गो योर ओन वे।
सो नटराजन पिल्लई सर का डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स का?
दैट्स व्हाट आई सेड,
फाइनल डेफिनेशन है
सर। फाइनल डेफिनेशन ये है कि नेवर बी सैटिस्फाइड, लायबिलिटी विल गिव यू सक्सेस। मे बी इट हियर्स लाइक ए कॉन्ट्रडिक्टरी, बट मैं बोलता हूँ कि लायबिलिटी एक रहना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो कि मेरे घर पे एसी लग गया और आप सेटिस्फाई होकर सो गए, तो आपका ग्रोथ रुक गया। आप एसी लगाने का क्यों सोचना है कि ये घर में ये एसी लगने से अच्छा काश 2 BHK होता, इससे बड़ा एसी हो सकता। तो आप एक लायबिलिटी बढ़ाओ, मेरे को 2 BHK लेना। आपने पहला मारुति कार ले लिया, आपका सेटिस्फेक्शन हो गया, आप रुक गए, नहीं चलेगा, आपको लायबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। यार मारुति कार से मैं हस्बैंड वाइफ ठीक था, कल बच्चा होगा, उसकी फैमिली बढ़ेगी, मुझे बड़ी कार चाहिए। तो कंफर्टेबल जोन में जब आप रहते हो तो आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। इकोनॉमिक्स में सबसे ज़रूरी है अनकंफर्टेबल जोन में हो, आप लायबिलिटी के साथ चलो। अगर मैं आपके ऊपर है ना हर महीने 20,000 का EMI डाल दूँ ना, आपको नींद आएगा क्या?
नहीं आएगा, उल्टे में वर्क
आपको प्रेशर रहेगा। बेटा हम लोग वो जनरेशन से हैं जब संडे को बीच रोड में क्रिकेट खेला करते थे।
हाँ,
हम लोग वो जनरेशन जब संडे को बीच रोड पे क्रिकेट खेला था, बिकॉज गाड़ियां नहीं निकलती थी संडे को, लोग संडे को छुट्टी मनाते थे. बट जब से क्रेडिट कार्ड आया लाइफ चेंज हो गई. तो क्रेडिट कार्ड क्या लाइफ चेंज की, कि क्रेडिट कार्ड में इंसान खर्चा करता है फिर बिल भरता है. समझना है, पहले पुराने बिल्डिंग्स को देख लो, ग्राउंड फ्लोर रहते थे, आज ग्राउंड फ्लोर कहाँ जिंदा है, ग्राउंड फ्लोर खत्म हो गया. क्यों, ग्राउंड फ्लोर में मुझे गाड़ी खड़ी करनी है, ग्राउंड फ्लोर में गाड़ी खड़ी करनी है, अंडरग्राउंड में गाड़ी खड़ी होती है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, चार फ्लोर तक आपके पास गाड़ियाँ हैं. तो ग्राउंड फ्लोर कहाँ से आएगी, आपका फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट होता है छः माले से. तो ये चेंज चेंज होती रहेगी और इकोनॉमी का कोई डेफिनेशन नहीं है. मेरा जो डेफिनेशन है वो भी आज जो है वो कल चेंज होगा और होना भी चाहिए. बिकॉज इंसान अगर अपने आप को फिक्स करके चलेगा तो वो नहीं चलेगा. लाइफ इज वन थिंग विच इज फिक्स इज चेंज.
सर आपने एक बार लेक्चर के टाइम पे बोला था कि हमारे जो फेस्टिवल्स जिस हिसाब से अरेंज्ड है, हमारे एंसेस्टर्स जो है उन्होंने बहुत परफेक्टली फेस्टिवल्स को अरेंज करके लाया है जिससे इकोनॉमिक्स को रिवाइव कर सकते हैं. तो क्या था, आप बोल सकते हैं प्लीज.
देखो बट एक्चुअली हमारा फेस्टिवल्स है ना, ये इकोनॉमिकल बेस्ड है और साइंटिफिक बेस्ड है. जैसे आप बोलते हो कि गुड़ी पड़वा भी आ रही है, तो गुड़ी पड़वा में तिल गुड़ खाओ. वाई तिल गुड़, वो मौसम के हिसाब से साइंटिफिकली वो तिल गुड़ अच्छा रहता है. अब मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ कि हमारा फेस्टिवल्स चलता कैसा. अभी आप ध्यान से देखो, गणेश चतुर्थी में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है. गणपति में हम लोग कर, क्योंकि वो पहला घर पे गणपति आता था. अभी तो चलो लोकमान्य तिलक ने उन्हें बाहर लेके आया, बट उस जमाने से फेस्टिवल्स में गणपति पापा घर पे आते थे. वो तुम्हारा घर घर नहीं है, वो मामा का घर है गणपति का.
अच्छा,
ये तो गणपति जी अपने मामा के घर पे आते. तो मामा क्या करता है, उसको तरह तरह के, कि बचपन हम लोग बोलते थे ना, क्या कुछ खाया मामा के, लड्डू पेड़ा, है ना. तो गणपति पापा के ऊपर है. तो जब आने वाला है मेरा भांजा आने वाला, तो उसके लिए मुझे पैसा बचाना है. तो गणपति के आने से पहले अगर आप ध्यान दो तो एक पीरियड होता है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं महाराष्ट्र लोग, जब बिल्कुल नॉनवेज बंद होता है.
याद मुझे नहीं पता,
आपको याद नहीं है, आपको पता नहीं है. ओके, उस पीरियड को महाराष्ट्र लोग बहुत ही प्योर मानते हैं. उस टाइम पे नॉनवेज बंद हो जाता है, एग वगैरह बंद हो जाता है, बाकी कुछ खाना एकदम अवॉइड करते हैं. और उस जमाने में नॉनवेज ही सबसे ज़्यादा खर्चा होता था.
अच्छा,
ओके, नॉनवेज ही सबसे ज्यादा खर्चा होता, तो नॉनवेज बंद करते.
बट तो भी अगर वो जमाने में जहाँ पे इकोनॉमिक्स इतनी नहीं थी स्ट्रॉन्ग और लोगों के पास इतना एक्सपेंस करने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो भी नॉनवेज लोग खाते थे.
नॉनवेज खाते थे कि उस टाइम पे उस पैसे को अलग तरीके से होता था ना. अभी आज हमारे लिए जो महंगा है, उस जमाने में अलग महंगा था. मैंने बचपन में 5 पैसा 10 पैसा देखा, आपने देखा है क्या?
नहीं,
तो मेरे लिए वो 4 आना 8 आना महंगा था. आप लोग के लिए 1 रुपया सस्ता है, लेकिन 10 रुपया महंगा है. तो आपका बच्चा अगर 10 रुपया स्टार्ट करे, अगर अपना करेंसी और ख़राब हो जाए तो, विच आई डोंट बिलीव इट विल टू हैपन, बिकॉज इंडिया का इकोनॉमी काफ़ी प्रोग्रेसिव है. तो आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस पर हम बाद में बात करेंगे. तो उस टाइम पे 1 महीना तक नॉनवेज नहीं खाते थे, खर्चा बचाते थे ताकि वो गणेश चतुर्थी पे खर्चा कर सके. फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के बीच में 7 महीना आता है. तो अगेन, तो आवर इकोनॉमी बेस्ड ऑन रेसेशन एंड सरप्लस एक्सपेंडिचर. रेसेशन एंड सरप्लस, फिर नवरात्रि और दिवाली के पीछे फिर एक गैप आता है. उस टाइम पे भी वो लोग खर्चा नहीं करते, बोलते नया शादी नहीं करने का डूबा हुआ है, तो चांद डूबा हुआ है, तो उस टाइम पे भी नहीं करते, तो उस टाइम पे भी रोक देते थे. फिर दिवाली में खर्चा कर देते,
तो बीच में गैप मिल जाता
है, तो गैप में उन लोग पैसा जमा करने को टाइम मिल जाता. तो इट रियली शोज कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो पैसे की कदर भी करते थे, पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करना वो भी जानते थे, कब खर्चा करना था कि मार्केट के अंदर कैसा पंप. अभी तुम बोलते हैं गवर्नमेंट पैसा मार्केट में पंप करनी चाहिए, हाँ, तो इसलिए रोड खोदो रोड बनाओ. तो टेक्निकली गलत नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों को पैसा उठा के फेंक नहीं सकते, तो उनको काम देना पड़े. तो मार्केट में गवर्नमेंट पैसा सप्लाई करती है, तो हमारा फेस्टिवल जो है वो मार्केट में पैसा सप्लाई करता है. तो इसलिए अगर आस्ते आस्ते अगर हमारा फेस्टिवल खत्म हुआ तो इंडिया का इकोनॉमी रिसेशन देखता है, डिप्रेशन नहीं देखता. अगर फेस्टिवल खत्म हुआ तो इंडिया का इकोनॉमी डिप्रेशन भी देखेगा, एंड विच इज वर्स्ट फॉर इंडिया इकोनॉमी. तो हम लोग कैसे टॉप में रहते हैं, रिसेशन होता है, डिप्रेशन से जाने से पहले ही वापस हम लोग टॉप होते हैं. तो ये साइकिल कंप्लीट होने नहीं देता है बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स. तो फेस्टिवल इज एक्चुअली सर्कुलेशन ऑफ मनी. इससे मैं आप लोगों को ही बोलता हूँ कि अगर आप कभी मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, इवन तो आपको ऐसा लगता है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान पर बिलीव नहीं करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मत करो भगवान पर बिलीव. इंसान पे तो बिलीव करते हो, इकोनॉमिक्स में तो बिलीव करते हो. तो बाहर जो दुकान वाले बैठते हैं, पेड़ा लेके खा लो, मत चढ़ो मंदिर में, खुद खा लो, लड्डू लेके खा लो. बिकॉज वहां पे जो दुकान वाले बैठे हैं वो भगवान के भरोसे नहीं बैठे हैं, आपके भरोसे बैठे
कस्टमर्स के,
कस्टमर्स आएंगे तो इकोनॉमी चलेगी। ओके, मस्जिद जाते हो चद्दर मत चढ़ाओ, मस्जिद में चढ़ाओ कोई बात नहीं, बट वो चद्दर लेके फुटपाथ में जो सो रहे हैं उसको चढ़ा दो, अरे खुद पहन लो नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट पैसा खर्चा करो। चर्च जाते हो कैंडल लो, तुमको नहीं, तुमको लगता नहीं कि जीसस को कैंडल चाहिए, नो प्रॉब्लम, तुम नहीं मानते भगवान को, नो प्रॉब्लम, बट क्या वो कैंडल लेके तुम अपने घर पे नहीं लेके आ सकते हो, बर्थडे मनाओ उसमें से, रात को कैंडल लाइट डिनर करो,
तो एक्सपेंस जो होता
है, तो वो एक्सपेंस जो मंदिर मस्जिद चर्च के बाहर होना चाहिए वो होना चाहिए, दिस इज इकोनॉमिकल,
मनी सर्कुलेट
होता है, ऑफ कोर्स मनी सर्कुलेट होता है। तुम ट्रेन में जाते हो, कोई 5 रुपया कोई बेच रहा है, कोई 10 रुपया कोई बेच रहा है, खरीदो ना, तुमको क्या फर्क पड़ता है, वो 5-10 रुपया भीख देने से अच्छा है तुम उस आदमी से खरीदो, वो तुम्हारे काम का नहीं है, तुम घर पे आके बॉक्स बनाओ उसमें डाल दो। बड़े छोटा पैसा निकलना चाहिए, बिकॉज छोटे पैसे गरीबों के पास जाता है और यही पैसा सर्कुलेट होकर आपके पास आती है। फिर बोलते हो आप इकोनॉमिक रिसेशन में चल रहा है, खर्चा ही नहीं करोगे तो इकोनॉमिक रिसेशन में चलेगा, मनी इज नीड टू फ्लो, मन में मनी इज नीड टू फ्लो, आइदर इट इज फ्रॉम अ गरीब आदमी या पॉलिटिशियन, पैसे को बाहर निकलना बहुत जरूरी है।
यस, ये बहुत परफेक्ट था, आई गेस मेरा जो क्वेश्चन था उसका परफेक्ट आंसर आ गया। सर एंसेस्टर्स की बात करें तो एक हर जगह पे एक प्रोज होता है, एक कॉन्स होता है, प्रोज ये आपने जो बोला वो कॉन्स, मुझे एक मेरा पर्टिकुलर है कि जो पहले का जो ओल्ड थिंकिंग था वो अभी भी सेविंग्स पे ज़्यादा बिलीव करता है, बट इन्वेस्टमेंट वही रिस्की समझते हैं। ऐसे यूथ है अभी 18-19 ईयर्स के जो मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे जा रहे हैं अभी, जैसे हम लोग हैं BSc जो सीख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट पे फाइनेंस, यूजुअली जो वर्ड है फाइनेंशियल लिटरेसी, वो इंडिया में ऐसे यूथ अभी आ रही है बट पहले इतनी नहीं थी, आई गेस दो जनरेशन, जैसे आपकी जनरेशन से भी पहले वाली जनरेशन,
पहले लिटरेसी नहीं थी, ऐसा नहीं था, पहले का कंफर्ट जोन अलग था। अगर तुम मुझे आज से एक 20-25 साल पहले, जब मतलब टुडे आई एम 46, तो आप मेरे को 20-25 ईयर्स के पहले पूछते हैं ना, तो मैं क्या बताऊँ, मैं 20-25 साल की उम्र में एक एक्स्ट्रा घर होता, एक दुकान होता, भाड़ा आ जाता, वो काम करने की क्या जरूरत है। लायबिलिटी होना बहुत जरूरी है तभी इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगा, तो आपको सेटिस्फेक्शन वाला जो टर्म है वो नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा सोचना चाहिए कि मैं प्रोग्रेस ही और कैसे हूँ, मैं और कहाँ पे अपना पैसा खर्चा करूँ, या मैं और कहाँ से कुछ और कमाऊँ। जिस दिन आप थक के रुक गए उस दिन आप खत्म हो। देखो डेड बॉडी और लिविंग इंसान में यही फर्क है, डेड बॉडी कुछ नहीं कर सकती है और लिविंग इंसान बहुत कुछ कर सकता है। जब आप बोलते हो कि मुझे कुछ नहीं करना, मेरा सब कुछ हो गया, तो यूर डेड बॉडी, तो डेथ ऑफ इकोनॉमिक लिटरेचर से डेथ
ऑफ जो कंफर्ट जोन है वो एक्चुअली आपको मार रहा है।
हाँ, बिकॉज कम्फर्ट जोन आपको प्रोग्रेस करने नहीं दे रहा, आपको कम्फर्ट हो गया, सब कुछ मिल गया, आपको ऐसा सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूँ, आप अपने अपने लाइफ में डेफिनेट आप बहुत सक्सेस करने हो लाइफ में, बट सपोज इन केस अगर नहीं सक्सेस हुआ, तो आप आपका बेटा बोल रहा है कि पापा 5-star होटल जाते हैं, तो तुम अगर उसको ये स्टेटमेंट देते हो, अरे 5-star होटल तो वो लोग जाते हैं जो हराम की कमाते हैं, चीटिंग करते हैं, वो लोग जाते हैं, ये क्या बात होगी, ये तो तेरा डिसकम्फर्ट है कि तू नहीं कमा पाया। जो 5-star होटल जाते हैं क्या सबके सब हराम की कमाई खा रहे हैं,
और वो सिर्फ छुपाने के लिए,
वो अपना नेगेटिवनेस छुपाने के लिए, अपना फेलियर छुपाने के लिए बोलता है, समझा ना। तो तेरे अंदर वो कीमत होनी चाहिए थी, बेटा 5-star होटल जाना है, नेक्स्ट बर्थडे में तो वो 5-star होटल लेके जाऊंगा, जो मांगेगा वो देगा, दैट इज योर इकोनॉमिक। ये बोल रहे कि वो सब चोर लोग ही जाते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां तो चोरों के पास ही होती है, हर आदमी चोर नहीं होता, और अगर हर आदमी चोर है तो हर आदमी जेल में होना।
सर आप बोल रहे हो कि सेटिस्फेक्शन अगर ना हो तो ग्रोथ नहीं होता, बट सेटिस्फेक्शन भी तो जरूरी है ना लाइफ में,
सेटिस्फेक्शन होने का रुकना नहीं है, बिकॉज इकोनॉमी सेज अनलिमिटेड वांट्स होनी चाहिए, तो तुम्हारी वांट्स लिमिटेड कैसे होगी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दे। इकोनॉमी का सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड मींस रिसोर्सेज लिमिटेड है दुनिया में, तेरे वांट्स अनलिमिटेड, तो वो सब कुछ चाहिए, तो सब कुछ चाहिए तो सब कुछ डालना भी तो पड़ेगा, तब सेटिस्फेक्शन कैसे हो सकता है, तो सेटिस्फेक्शन इज अ रॉन्ग वर्ड इन इकोनॉमिक्स।
बट सर अगर एग्जाम्पल ले रहे कि अगर एक इंसान सेटिस्फाइड ही नहीं है तो फिर वो काम कर रहा है, तो मतलब क्या है उसका,
वो सेटिस्फाइड नहीं है ऐसा नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन पूरा होने के बाद दूसरा सेटिस्फेक्शन ले जाना चाहिए।
हाँ,
जैसे आपने चिकन खा लिया, पेट भर के आपका खाना हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नेक्स्ट टाइम खाना नहीं खाओगे, और ये भी नहीं होना चाहिए कि आप नेक्स्ट टाइम सेम खाना खाओगे। अगर अभी मुझे पनीर पसंद है तो बाद में मशरूम पसंद होना चाहिए, तुम तीन टाइम पनीर खाओगे ना, एक दिन पनीर का पीक आ जाएगा, आप पनीर से नफरत करना स्टार्ट कर दो। तो इसलिए आपका व्यूज चेंज होते रहने चाहिए, आपका परसेप्शन चेंज होता रहना चाहिए, आपका चॉइस चेंज होना चाहिए।
सर, इंडिया अभी एक ग्लोबल कॉम्पिटिटर के हिसाब से खड़ा है पूरे वर्ल्ड के सामने, और बहुत सारी कंपनीज भी इंडिया में शिफ्ट हो रही है। आई गेस COVID-19 की वजह से चाइना में लोग अभी पता नहीं क्यों ऐसा ये हवा बन गया है कि ज़्यादा भरोसा नहीं रखता, और इंडिया में शिफ्ट हो रही है ऐसे मुझे न्यूज़ आ रहे हैं। तो ये क्या इफेक्ट करेगा?
इट इज़ अ मैटर ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड ट्रस्ट। चाइना को आज जितना ऊपर पहुँचाया है तो चाइना ने नहीं पहुँचाया, चाइना के कस्टमर्स उनको चाइना में।
कैन यू एक्सप्लेन इट?
फॉर एग्जाम्पल, चाइना कुछ भी प्रोड्यूस करता है तो वर्ल्ड में अगर वो चीप क्वालिटी है या बेस्ट क्वालिटी है, उसके बाद बायर है।
हाँ,
चीप क्वालिटी के लिए भी बायर है और टॉप क्वालिटी के लिए बायर। तो चाइना को आज चाइना बनाया तो बिकॉज ऑफ द बायर्स। बट आफ्टर दिस कोविड, जो उसको ओपनली बोल देना चाहता कि हाँ मेरे से गलती हो गई, ऐसा चीज हो गया, बट वो बोल नहीं सकता क्योंकि पूरी दुनिया उसके ऊपर केस कर देगी। और जो लॉसेस हुआ है वो चाइना को बेयर करना इम्पॉसिबल टू बेयर, जिससे चाइना को भी मानेगा ही। सेकेंडली, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अरे तू गलती मानना, और तू गलती मानने को तैयार नहीं है तो मैं तेरे पास से सामान क्यों खरीदूं? तो पब्लिक देख रही है कि हम लोग एक अल्टरनेटिव चाहिए, ताकि मोनोपोली चल रहा है चाइना उभरे को। और सेकेंड थिंग, इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसके पास इतना ह्यूज पॉपुलेशन है, रिसोर्सेस है,
ह्यूज
लैंड है, मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर को उसकी जरूरत हो। अभी आईफोन का कस्टमर उसको मालूम है कौन है? वो चाहे चाइना में बनाए, ग्रीस में बनाए या इंडिया में बनाए, उसका कस्टमर उसको मालूम है कौन है? तो उसको मेन चीज है कि मैं चाइना पे वो टोटल निर्भर ना हो, तो मुझे एक अल्टरनेटिव चाहिए। तो टेक्निकली एडवांस्ड एजुकेटेड क्वालिफिकेशन पीपल, और आज टेक्निकल नो हाउ में इंडिया काफ़ी आगे है, वरना बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ इंडिया नहीं होंगे, इंटरनेशनल कंपनी से सीईओ इंडिया नहीं होते। तो हम लोग ने अपना कैलिब्रिटी प्रूफ कर दिया है वर्ल्ड में। सेकेंडली, हम लोग है ना एक तरह का माइंडसेट है कि कंपनी में जब हम काम करते हैं ना, वी पुट 100% इन दैट। और हम लोग कभी नहीं बोलते कि आई एम वर्किंग इन आईफोन, आईफोन बोलते हैं हम लोग कि आईफोन मेरा कंपनी है। तो व्हेन यू से मेरा कंपनी, यू पुट 100% इन दैट, यू नेवर से कि मेरा बॉस। बोलते कि नहीं, मेरा कंपनी, मेरा घर का कंपनी, आप मेरे कंपनी में काम करता हूँ, तो हम लोग की कंपनी ऐसा करती है। तो फॉरेनर्स ने देखा है कि इंडिया जब डेस्परेटली काम करता है तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी सब चीज में वेस्ट होता है। तो आफ्टर चाइना, कि चाइना में कैसा है ना, जबरदस्ती गवर्नमेंट बोलती है करके लोगों को काम करना पड़ता है, डंडा पड़ेगा और ना खाना नहीं मिलेगा। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में लॉयल्टी है।
सर, आई गेस वो है ना एक ड्यूटी है, जबरदस्ती ड्यूटी बेटर है वैसे चाइना में, बट इंडिया आई गेस मुझे लगता है इमोशंस पे ज्यादा काम करता है। हां यार, मेरा
देखो फॉरेन में कैसा हमने कहा, अगर आप दूसरे कंट्रीज में देखा जाए, वहां पर बॉस मिलता है ना, तो उसको अच्छी वजह बोलता है काटने के दारू पी। बट हम लोग है ना 15 साल पहले की जॉब छोड़ दिया, अगर हमारा बॉस देखे ना उसको रेस्पेक्टफुली सर कैसे आप, चाहे हम आज उससे बड़े हो गए हो बट उसको छोड़ते नहीं है, सर आप कैसे, उसके सामने बैठे धर नहीं पीएंगे तो अलग हो जाएंगे। तो वो रेस्पेक्ट, अगर वो रेस्पेक्ट है करके आज हम लोग इंडिया, बिकॉज इंडिया में रेस्पेक्ट सबसे आगे होता है, प्रोफेशनलिज्म सबसे आगे होता है, और ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर चलती है। तो उसके वजह से वर्ल्ड को आज भरोसा है तो इंडिया पे ही है, कि जो ऑलरेडी लेके जाए, बिकॉज पॉपुलेशन, रिसोर्सेस एंड अगेन सेम थिंग, डेस्परेशन टू वर्क एंड गेट सक्सीडेड।
और ये एक स्ट्रेंथ है इंडिया का,
बिकॉज आज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है बेटा। आज के डेट में हमारे पास जितने इंजीनियर्स है पूरे वर्ल्ड में नहीं है, अकेला इंडिया जितना डोमिनेट करता है पढ़े लिखों में उतना किधर भी नहीं है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है इंडिया।
सर, लेक्चर्स के टाइम पे आपने बहुत सारे फैक्ट्स बताए थे इकोनॉमिकली, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। उसमें से एक फैक्ट मुझे अभी भी याद है कि सर आपने 2 साल पहले मुझे बोल दिया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि 2000 के नोट है ना बहुत मार्केट में कम होने वाले, शॉर्टेज होने वाले, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे थोड़े टाइम बाद 2000 की नोट मार्केट में नहीं रहने वाली है। और वो आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे व्हाट्सअप कहते हैं यार ये न्यूज़ पक्की है कि 2000 के नोट बंद होने रहे हैं, और मैं मुझे बोलता हूँ हाँ सही, नटराजन पिल्लई सर ने मुझे 2 साल पहले ही बोल दिया था।
देखो, जब पहली बार जब 2000 का नोट आया था तो हम लोग के माइंड में एक था, क्योंकि इससे पहला जो डिमोनेटाइजेशन वाला नोट था तो वो था हमारे पास 500 और 1000 का नोट। तो सबको क्या लगा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद 500 और 1000 का नोट आएगा, बट अचानक से इस गवर्नमेंट ने 2000 का नोट निकाला। तभी मेरा माथा ठनका था कि 2000 का नोट क्यों निकाल रहा, बिकॉज एज एन इकोनॉमिस्ट आई नो कि जितना बड़ा नोट उतना गरीब देश। पाकिस्तान में 5000 का नोट है, कोई देश में 10000 का नोट है, किस देश में तो 1 लाख का भी नोट है, आप पे पेप्सी पीने जाओ तो एक 1,00,000 रुपया देना पड़ेगा।
थाईलैंड
उसमें जाना नहीं जाना
हिमबाली थाईलैंड
को या थाईलैंड हो गया राजू हो गया तो मुझे उसमें जाना नहीं है उसमें क्योंकि हम लोग टोटली इंडिया के बात कर रहे हैं। तो मेरा माता मम्मी डर गया यार ये देश को गरीब करने वाला है क्या मोदी। फिर जैसा सर टाइम गया तो उसने 2,000 के नोट के बाद सीधा उसने 200 करोड़ निकाला, 500 करोड़ निकाला और उसके बाद वेट कर रहा हूँ 1,000 करोड़ आ जाएगा कल आएगा, वो नहीं आया है ना। बाकी दुनिया के सारे रंग आ गए, पिंक कलर आ गया, ब्लू आ गया, सारे कलर आ गए, बट ये क्यों नहीं आ रहा। तो रियलाइजेशन जैसे होगा कि स्टैटिस्टिकली देखना स्टार्ट किया कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है और अचानक एक बंदा आके बोल रहा है कि हम लोग 5 ट्रिलियन क्रॉस करेगा तो फिर स्टार्टेड जॉइनिंग डॉट्स, दिखाई दे ये तो कुछ झूल कर रहा है। एंड यू नो दैट कि द डेवलप नेशंस अभी अमेरिका ले लो, ब्रिटेन ले लो, तो इन लोग का सबसे बड़ा नोट क्या है? 100 रुपया है ना,
100 डॉलर।
और अब आज भी वो लोग चिल्लर में जी रहे हैं, जैसे ना आपने 5 पैसा 10 पैसा देखा क्या? आपने नहीं देखा, मैंने देखा, बट ये खुशी की बात है दुख की बात है कि वी लॉस्ट अवर सेंट्स। जो आज भी अमेरिका वगैरह में सेंट्स चल रहा है, चिल्लर चल रहा है, हमारे देश में चिल्लर नहीं चल
नहीं चलता।
तो अगर 2,000 करोड़ को मैं हटा दूँ तो इंडिया का सबसे बड़ा करेंसी क्या हो जाता है?
500,
यानी कि सीधा 1,500 गायब। तो अगर टेक्निकली देखा जाए, अगर मेरा प्रेडिक्शन रॉन्ग नहीं है तो 2,000 का नोट छपना भी बंद हो चुका है। और अगर आप एक 10,000 रुपया लेके बैंक में लाइन में खड़े हो जिसमें 2,000 के 500 रुपये और मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, मेरे को 10,000 रुपया निकालना है, तो बराबर से ऑब्जर्व करना, कैशियर आपका 10,000 लेके मुझे 10,000 नहीं देता है, वो 2,000 के नोट को ब्लॉक में डालता है, अपने कैबिन में डालता है और मुझे 500 जबकि उसके लिए बहुत ईजी था कि यहाँ से 10,000 लिया, मैंने तो 10,000 दे दिया, अकाउंट वहाँ भी सेटल हो गया, बट नहीं, वो 2,000 नोट टेबल में डाल रहा है और 500 के नोट आपको दे रहे हैं। तो जब ये सब डॉट्स को मैंने जब ज्वाइन किया, जैसे कि हमारे अमित शाह बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल तो जब मैंने ये क्रोनोलॉजिकल देखा तो आई एम 100% श्योर कि एक दिन हमारी गवर्नमेंट में से कोई आएंगे, शायद मोदी जी आएंगे या अमित शाह आएंगे या कोई और आएगा, सीता मैडम सकती है और आके बोले कि आज से 2,000 का नोट टोकन मनी बनी है और तब कुछ लोग बंडल लेके जाएंगे चेंज करने के लिए, तो गवर्नमेंट बोलेगी जब मैंने कहा था कि सारे पैसे बैंक में होने चाहिए तो तेरे पास इतना कैश क्या कर रहा है, तो अभी भी हल्ला हंगामा बचेगा, अरे गवर्नमेंट ने पैसा डुबा दिया। पैसा, पहली बात तो गरीब आदमी क्या 2,000 का 5 नोट हो सकता है?
हाँ,
1,000 नोट क्यों होता है? रोएगा तो गवर्नमेंट तो बोलेगी ठीक है 1,00,000 तक 2,000 का नोट तो ला के दो, बट 1,00,000 से ज्यादा आपके 2,000 का नोट क्या कर रहा है? तब जब क्वेश्चन रेज होगा तभी ये जो ब्लैक मार्केटिंग वाले बिल्डर्स है या कैटरर्स वाले जो कैसे डील करते हैं,
जो डीमोनेटाइजेशन में बच गए अभी यहाँ पे,
हाँ तो यहाँ तो जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन में किसी किसी को पकड़ के जो काम करा के लिया वो वापस फंसे क्योंकि उन्होंने 2,000 रुपया बना के रखा हुआ। तो आई थिंक जल्द से जल्द मोदी गवर्नमेंट 2,000 का नोट को बंद करना चाहिए और इंडिया को डेवलपिंग वर्ल्ड से, अभी डेवलप तो नहीं बोल सकता बट इट शुड बी सुपर डेवलप, बहुत फास्ट ग्रोथ हो रहा है। Because I believe in only 2 terms, either you are developed or not developed.
Sir, America तक पहुँचने में कितना time लगेगा?
Maybe 20 years.
20 साल में।
अगर ये speed से चला तो maybe 20 years. America खुद आज परेशान है। After आत्मनिर्भर उन्होंने मेरा सोचा joke है करके। But American का 2 दिन पहले एक newspaper में article आया था, American Economist का एक article आया था, बोलता है कि आत्मनिर्भर को जितना lightly लिया जा रहा है उतना lightly नहीं, अगर ये success कर दिया तो इसका ग्रोथ रेट अमेरिका से भी ज़्यादा होगा। हम लोग 12% सोच रहे हैं, ये 12% नहीं, बाय द गॉड ग्रेस अगर सब चीज़ सही तरीके से चली तो इंडियन ग्रोथ विल बी 22% प्लस 20% अबोव में प्रेडिक्ट कर। शायद अभी जोक लगे मेरा इंटरव्यू देखने वाले भी शायद हंसे मेरे पर, बट याद रखना जब भी कोई इंसान ट्रेंड के बाहर बात करता है तो लोग उसके पहले हंसते ही हैं और जब होता है तो बोलता है हाँ एक पादर नटराजन सर था उसने बोला था ये हुआ। इंडिया 20% जाएगा, किसी ना किसी जाएगा, जब मुगल पहले हम जा सकते थे
तो अब तो
आज क्यों? तो डेफिनेटली इंडिया विल बी अ हब, इंडिया विल बी लीडर फाइनेंशियली। इनफैक्ट आज अमेरिका पाकिस्तान बोल रहा है कि हमसे बैठ के बात करो, चाइना बोल रहा है कि बैठ के बात करो, तो यानी कि मसल्स में भी हम लोग बड़े हैं, फाइनेंस में भी बड़े हैं और दिल से तो बोलने की जरूरत ही नहीं।
वो तो इमोशंस तो इंडिया में पहले से
ही, हम तो है इंडियन तो दिल तो हमारा बड़ा है, ये प्यार तो हमारा भरपूर है।
थैंक यू सो मच।
थैंक यू मैडम। थैंक यू।